नियम सार कारण कार्य नियम लेक्चर नंबर एक। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाहूणं नमिऊणजिनं वीरं अनन्तवर्णानदंशनसहावम् वोच्छामि नियमसारं केवली सुदकेवली भणिदम्। आचार्य श्री कुंदकुंदाचार्य प्रणीत यह नियमसार नामक ग्रंथ है और उस पर कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं और इस नियमसार पर पद्म प्रभमलधारी देव की जो तात्पर्यवृत्ति टीका है, मूल गाथाएं, तात्पर्यवृत्ति टीका और उस पर के जो प्रवचन है स्वामी जी के, इन प्रवचनों का जो संकलन किया है उसका नाम है कारण कार्य नियम। क्योंकि इसमें सब नियम की, तो नियम क्या है, उसकी सार क्या है, उसकी सब चर्चा करेंगे अभी हम। तो इन पुस्तकों के जो 7 भाग प्रकाशित हुए हैं गुरुदेव के, इन जो तात्पर्यवृत्ति टीका सहित जो मूल नियम सार पर, तो उसका नाम है कारण कार्य नियम। अभी जो हमने मंगलाचरण देखा है वो मूल पहली गाथा है जो पेज नंबर 21 पर है, वहां से रोज मंगलाचरण करेंगे। अभी थोड़ा प्रस्तावना, पेज नंबर जो 3 है ना, पहला तो पेज पुस्तक का नाम वगैरह है, उसके बाद वाला जहां से प्रस्तावना शुरू होती है उसके कुछ अंश हम देखेंगे। देखो शुरुआत में पढ़ते हैं, भगवान कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत, प्रणीत ने उनका बताया हुआ, हम कहते ना सर्वज्ञ प्रणीत मिला बहन एकदम स्टार्टिंग में जहां, हाँ वो पहला पेज छोड़ दो, वहां वही प्रस्तावना कि भगवान कुंद, देखो इनको आचार्य है उनको भगवान कहने की पद्धति है। तो भगवान कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत नियमसार नामनु शास्त्र अध्यात्म प्रधान द्वितीय श्रुत स्कंधना। ये द्वितीय श्रुत स्कंध कहाँ मिली भाई, तो पहला श्रुत स्कंध कोई होना चाहिए, तो प्रथम श्रुत स्कंध कौन सा है? समय सर बहुत सारे शास्त्र हैं, आप किसी का भी नाम ले लो, आपको क्या अब ब्रह्मा मिला आपको उसी के उसके बाद में प्रस्तावना वाला पहला। यहाँ क्या लिखा है, प्रथम ये द्वितीय श्रुत स्कंध, पहला श्रुत स्कंध कौन सा है पता है? षटखंडागम। ये जो समय सारादि सारे जो ग्रंथ है वो सारे द्वितीय श्रुत स्कंध ने शाखा, ये पहली शाखा जो पहले रिटर्न जो हमें हमारे पास अवेलेबल है वो षटखंडागम है लिखित रूप से, वो प्रथम श्रुत स्कंध है। कौन सा विषय उसकी बात नहीं है, श्रुत की बात है, वो भी पहले श्रुत कौन सा लिखा गया है तो उसको प्रथम श्रुत स्कंध कहते, ये दूसरी शाखा है द्वितीय श्रुत स्कंध इसको कहेंगे। कुंदकुंदाचार्य की जो परमागम वगैरह जो है अध्यात्म की बात है ये सारी, भूत बलि और हाँ पुष्पदंत आचार्य ने जो लिखा है वो प्रथम श्रुत स्कंध कहलाता है और इसको द्वितीय श्रुत, इसके पहले उसकी रचना हुई है, बाद में हुआ है, षटखंडागम पहले रचना है, पहले अपने रिटर्न धौला टीका तो बहुत बाद हुई है, हाँ षटखंडागम की है वीरसेन आचार्य की, कुंदकुंदाचार्य ने भी षटखंडागम टीका लिखी थी तो वो बहुत पहले परिक्रम नाम की। आप कुछ कहेंगे? हाँ तो इसको द्वितीय श्रुत स्कंध कहते हैं। द्वितीय श्रुत स्कंदना सत शास्त्रो मानु, यानी अनेक शास्त्र है वहां पर, एक सर्वोत्कृष्ट तेमज चारित्र प्रधान श्रेष्ठतम शास्त्र है। परम भट्टारक शासन नायक श्री महावीर स्वामी, देखो अरिहंत भगवान को भी भट्टारक कहते हैं, ये भट्टारकों की परंपरा चली, वो भट्टारक की बात आंखों के सामने मत लाना। शासन नायक हमारे, अभी उनका शासन चल रहा है ना, देखो जब उनका जो तीर्थ काल होता है, एक होता है शासन काल, तीर्थ काल जब तक उनका समोचरण चलता है, उनकी ओंकार ध्वनि कीर्ति है, तब तक उसको तीर्थ काल कहने में आता है, और उनके पश्चात जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होते तब तक उसका शासन काल कहने में आता है, और ये शासन नायक है हमारे। परम भट्टारक शासन नायक श्री महावीर स्वामी ना निर्वाण पछी अन्य केवली तथा श्रुत केवली कथित, अन्य केवलियों ने भी बताया, श्रुत केवलियों ने भी बताया। ये श्रुत केवली जो 12 अंक के जो धारक है, ऐसे उनको श्रुत केवली कहते हैं। ये प्रश्न परसों किसी ने फोन पर पूछा था, कहीं दूसरे गांव से फोन आया था कि प्रवचन सार में ये श्रुत केवली तो समय दृष्टि को भी कहा है, समय सार में भी कहा है, और वहां निश्चय से श्रुत केवली कहा है, तो क्या समझना उसका। पर ये जब केवली और श्रुत केवली कथित आगम कह रहे हैं, वो तो 12 अंक के ज्ञाता जो है, द्वादश अंक है, उन्हीं को, और वो तो मुनिराज ही होते हैं, ख्याल में आते हैं बात। अरे केवली तो केवल ज्ञानी है, ये तो श्रुत ज्ञानी है। देखो केवली श्रुत केवली में बहुत डिफरेंस है, केवली तो केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान है, और श्रुत केवली तो मुनिराज है, और वो श्रुत ज्ञानी है। समझ में, केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान में अंतर है कि नहीं? ये क्षोभसम ज्ञान, और वो उपदेश देंगे कौन से गुणस्थान में? छठे गुणस्थान में, और वो केवली उपदेश दे रहे हैं 13वें गुणस्थान में। डिफरेंस ख्याल में आएगा? देखो केवली तथा श्रुत केवली कथित आगम, ये आगम किसने बताया है? तो मूल तो हमारे महावीर भगवान ने तो बताया, उनके बाद भी कुछ केवली हो गए उन्होंने भी बताए, अनेक श्रुत केवली हो गए उन्होंने भी बताए, अने अध्यात्म विद्यानु संकलन, यानी उसको इकट्ठा जो किया है, चार अनुयोग ना असंख्य शास्त्रों में अनेक आचार्य मुनि भगवंतों वड़े संपन्न थयु, यानी भगवान के केवल ज्ञान के बाद भी ये श्रुत की जो रचना और परंपरा से जो श्रुत चला रहा है उसके अनेक शास्त्र भी बने। सनातन दिगंबर जैन संप्रदाय में, देखो यही जो ओरिजिनली जो यही बंध था, और बाद में उसमें अनेक भेद उपभेद शाखाएं चली जैन धर्म में इटसेल्फ, तो मूल तो एक ही थे ना, महावीर कितने हुए तो मूल धर्म तो एक ही होना चाहिए था, है ना? इसलिए कहते सनातन दिगंबर जैन संप्रदाय में कलिकाल सर्वज्ञ, ये कलिकाल ने वो पंचम काल के सर्वज्ञ भगवान जैसा जिन्होंने कार्य किया है, भगवान कुंदकुंदाचार्य ने स्थान अजोड़ छे, आश्रय 84 पाहुड़ शास्त्रों की भेट, पाहुड़ का ही अर्थ होते भेट, भेटनु तेव श्रीय आपी, परंतु उसमें ये कितने ही शास्त्र अवेलेबल नहीं है, कितना उन्होंने लिटरेचर वो तो लिखा होगा, छता हाल में गणतरी ना 12-15 ज उपलब्ध थी शक्या छे, 5 है रयनसार है, अन्य भी उनके कुछ चरणानियों के ग्रंथ है, हाँ मूलाचार है, है ना, मूलाचार है ना, तेमाना समयसार प्रवचनसार नियमसार जेवा उत्तमोत्तम परमागमों में हजारों शास्त्रों सार समाये जाए छे, एने मूल बात जो अपने अनुभव की बात है वो घूंट घूंट कर पिलाई है वहां पर, बिल्कुल ज्ञान की अपेक्षा से दृष्टि की अपेक्षा से इतना विस्तार से वर्णन किया हुआ है। जेम समयसार मा शुद्ध नैथी नव तत्वों निरूपण कर्यु छे, तेम नियमसार मा शुद्ध नैथी जीव अजीव शुद्ध भाव प्रतिक्रमण वगैरह विषयों वर्णन छे। अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ी उसके बारे में प्रस्तावना में पढ़ लेते हैं। वर्तमान में उपलब्ध भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देवना उत्कृष्ट परमागमों में अप्रतिबुद्ध ने, ये कौन सी डिग्री है अप्रतिबुद्ध मालूम है मनीषा बेन? नहीं, अज्ञानी लोग कहते हैं अप्रतिबुद्ध। हमारे यहाँ एक भाई आते थे, कौन क्या कांति भाई, हाँ, तो कहते कितनी रिस्पेक्टेड गाली है किसी को मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कहना तो अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगेगा, तो अप्रतिबुद्ध है, हाँ हाँ कुछ अपने को ग्रेट लगता है। अप्रतिबुद्ध ने समझावा अर्थ, देखो प्रतिबुद्ध है ना जो सयाना हो गया, समझ गया, ज्ञानी हो गया, उसको प्रतिबुद्ध कहेंगे। अप्रतिबुद्ध ने अज्ञानी, उसको समझाने के लिए रचायला सर्वोत्कृष्ट श्री समय सार जीमा दृष्टि प्रधान कथंती। दृष्टि प्रधान है ना, ये अपने में मैं कहाँ स्थापित करना है, तो वहां से राग को भी हटाया अपने में से, उसको कहेंगे दृष्टि प्रधान ग्रंथ। दृष्टि प्रधान कथंती शुद्धात्मा नु स्वरूप समझाव्यू छे। दिव्य ध्वनि ना सार श्री प्रवचन सार जीमा, प्रवचन दिव्य ध्वनि को प्रवचन कहा, उत्कृष्ट वचन, उसका सार ज्ञान प्रधान कथन थी। जैसे वहां तो जीव परिणम करता है, तो परिणमन करता है, तो राग उसी की पर्याय में, तो उसको ही कहेंगे, उसी का है, तो वो ज्ञान प्रधान हो जाएगा। ख्याल में, वहां कहीं विरोध नहीं है, अपेक्षा से कथन जो अलग अलग होता है। तेज स्वरूप वर्णव्यू छे, यानी वहां पर भी जीव का ही स्वरूप बताना था, स्वरूप तो उसी का कहना है। श्री नियम सार जी मां चारित्र नी मुख्यता थी तेज स्वरूप नु वर्णन छे, यानी यहाँ तो प्रयोजन क्या है, वितरागता प्राप्त करनी है, वितरागता प्रकट करवाना प्रयोजन थी दृष्टि ज्ञान चारित्र ना आश्रयभूत शुद्धात्मा नुज वर्णन अनेक प्रकारे करवामां आवे छे। चारित्र के लिए बाह्य शरीर के आचरण की बात नहीं की, ये सब तीनों ही अपेक्षा से बात करनी है, तो शुद्धात्मा का ही वर्णन बताया है, शुद्धात्मा में ही लीन रहना वही चारित्र है। श्री नियमसार जी ने तो आचार्य देवे पोताना जीवनना संध्याकाल में ने लास्ट लास्ट में उन्होंने निज भावना निमित्ते रचना करेल हुआ थी। यानी कभी कभी हम ऐसे ना अपने को तत्व ज्ञान का विचार करते, अपने को ही संबोधते हैं, इस तरह से उन्होंने अपने स्वयं के लिए इसकी रचना की है। कारण परमात्मा ने खूबज घूंटियो छे, ये कारण परमात्मा क्या है उसकी चर्चा आएगी ना, तभी उसकी विस्तार से बात करेंगे। असाधारण परमागमनी टीका, ये मूल में ये परमागम ही असाधारण है, और उसकी टीका करने वाले भी आचार्यों ने गजब काम कर दिया है। भावी तीर्थाधिनाथ अतीन्द्रिय आनंदना रसिक भावलिंगी मुनिराज श्रीमत पद्म प्रभ मलधारी देवे करीचे, ये आचार्य का नाम क्या है, पद्म प्रभ मलधारी देव, जेमना मुखमाती परमागम रूपी मकरंद झरे छे, एवा मुनिराज कहे छे के गुणना धरनार गणधरो थी रचायला तथा श्रुतधरोनी परंपरा थी। देखो गणधर तो साक्षात भगवान से वाणी सुनकर उन्होंने रचना की है, और श्रुतधर यानी द्वादशांग के धारी जिन्होंने परंपरा से आगे ये बात बताई, तो गणधरो थी रचायला तथा श्रुतधरो ने परंपरा थी सारी रीते व्यक्त करायला, आचार्यों की परंपरा से ये बात चली उपदेश। आ परमागमना सारनी पुष्ट रुचि थी आ टीका सहज रचाई गई छे, यानी ये टीका भी सर्वोत्कृष्ट है, मूल में ग्रंथ तो है ही है, उसकी टीका भी गजब की है। टीकाकारे श्री कुनकुंदाचार्य देवना हृदय में रहेला आध्यात्मिक भावों ने स्वानुभूति थी प्रमाण करी परम पारिणामिक भाव में रहेल अंतर रहस्यों ने खोलिया छे। देखो इतना पढ़ते तो हमें तो पहले से उत्साह है ना कि हमें ये पढ़ना है, और श्री नियमसार भरत क्षेत्र ना उत्तमोत्तम शास्त्रों मानु एक होवा छता प्राभृत्रयनी सरखामणी मां, प्राभृत्रय कौन से, समयसार प्रवचनसार और नियमसार, तेनी प्रसिद्धि घणी ओछी छे। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी विक्रम संवत 1972 मां હિન્દી નિયમસારની ભૂમિકામાં ખરું લખે છે કે આજ સુધી શ્રી કુંદકુંદાચાર્યના પંચાસિકાય સંગ્રહ, પ્રવચનસાર અને સમયસાર એ ત્રણ રત્નો જ બહુ પ્રસિદ્ધ છે. ખેદની વાત છે કે તેમના જેવું છતાં કેટલાક અંશોમાં તેમનાથી પણ ચઢિયા તો એની ઉસે બી બળકર કે અધિક છે એવું નિયમસાર રત્ન છે તેની પ્રસિદ્ધિ એટલી બધી ઓછી છે કે કોઈ કોઈ તો તેનું નામ પણ જાણતા નથી. એ પ્રસ્તાવના કા 4 નંબર કા પેજ પડેગી. નિયમસાર એટલે ભાગવત શાસ્ત્ર, એ ગાથા 187માં હતા. શ્રુત પરંપરામાં શાસ્ત્રોનું પ્રણયન શિષ્યોને સંબોધવા માટે અથવા વ્યક્તિગત ઉદ્દેશથી કરવામાં આવે છે, ઉસકી જો રચના જો હૈ. પરંતુ આ ગ્રંથાધિરાજની રચના આચાર્યશ્રીએ પોતાના દૈનિક પાઠ માટે કરેલી હોવી જોઈએ, કેમ કે આચાર્યશ્રીની ગ્રંથની છેલ્લી ઉક્તિ વડે સ્પષ્ટ થાય છે કે નિય ભાવના નિમિત્તમ, એને નિજ ભાવના કે નિમિત્ત. પ્રસ્તાવના, હા પ્રસ્તાવના કે બાદ સેકન્ડ પેજ જિસમે 4 નંબર લિખા હૈ શરૂઆત મેં, તો કહેતે નિજ ભાવના અર્થે પૂર્વા પર દોષોથી રહિત જિનોપદેશને જાણીને. જિનોપદેશ કૈસે હોતા હૈ? પૂર્વા પર દોષ સે રહિત હોતા હૈ. કહીં કુછ અર લિખા ઓર કહીં કુછ ઐસા કભી નહીં હોતા. જૈસે અન્ય મતિયો મેં દેખા, કહીં તો હિંસા કા પોષણ કરતે હૈ ઓર કહીં ઉસકા નિષેધ કરતે હૈ. કહીં તો કહેતે બ્રહ્મચર્ય ધર્મ હૈ ઓર કહીં વો તો સતી અનુસયા કો કહેતે અપુત્રસ્ય ગતિર નાસ્તિ, જાઓ શાદી કરો ઓર ફિર આવો તો સ્વર્ગ કે દ્વાર ખુલેંગે એસા કહેતે ઉસકે લિયે. યાની એસી ઉલટ પુલટ બાતે ઉસમે હોતી હૈ. મિલા કે આપકો? સ્ટાર્ટિંગ સ્ટાર્ટિંગ મેં લેના વો ચિત્રો કે પહેલે. પ્રસ્તાવ નહીં નહીં અચ્છા. તો વો ચિત્ર કે બાદ મેં હોગા શાયદ, ચિત્રો કે પહેલે નહીં ઉનમે, બાદ મેં ભી નહીં હૈ. અચ્છા ઠીક હૈ, આપ ઉસકે સાથ ઉનકો દેના પુસ્તક, ઉનકે સાથ દેખ લો. હા એ પ્રસ્તાવના ગ્રંથ કે બારે મેં ક્યા ક્યા લિખા હૈ ઉસકે બાદ હમ પઢ રહે થે 4 નંબર પર. અભી ઉસકે તીસરા પેરેગ્રાફ. નિયમસાર એટલે વ્યવહાર રત્નત્રયની અપેક્ષા વગરનું શુદ્ધ રત્નત્રયનું સ્વરૂપ. રત્નત્રય સમજતે? સમય દર્શન, સમય જ્ઞાન, સમય ચારિત્ર, જીસકો હમ કહીએ નિશ્ચય રત્નત્રય. તો વ્યવહાર કે અપેક્ષા બિના વાલા શુદ્ધ રત્નત્રયનું સ્વરૂપ નિયમ ઉસી કો કહેંગે ઓર ઉસમે જો સારભૂત જો ચીજ હૈ. આ ગ્રંથમાં પર્યાયની મુખ્યતાથી કથન હોવા છતાં ભાવલિંગી સંતોની દૃષ્ટિ તો તેના કારણ પર જ રહ્યા કરે છે. વો બારંબાર કરેંગે, કારણ કી ચર્ચા કરેંગે ઉસકી. કારણ સ્વયં શુદ્ધાત્મા. ભવ્ય જીવોના ભાગ્યોદયથી આ નિયમસાર કૃતિ પર તાત્પર્યવૃત્તિ નામક સંસ્કૃત ટીકા લખનાર મહાસમર્થ મુનિવર શ્રી પદ્મપ્રભ મલધારી દેવ મળ્યા, જેઓ શ્રી વીરનંદી સિદ્ધાંત ચક્રવર્તીના શિષ્ય છે અને વિક્રમની 13મી સદીમાં થઈ ગયા છે. એ સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી વો ષટખંડાગમ કે જો જ્ઞાતા હોતે ઉનકો સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી કહેતે. બહુ સારે આચાર્ય હો ગયે સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી. આ શાસ્ત્રજીમાં 187 ગાથાઓમાં પ્રતિપાદિત વિષય વસ્તુને નીચે મુજબના 12 અધિકારોમાં પ્રસ્તુત કરવામાં આવી છે. દેખો જો પહેલી પુસ્તક હૈ ઉસમે જીવ અધિકાર ઓર અજીવ અધિકાર દો અધિકાર યહાં દિયે, પરંતુ મૂળ સભી ટોટલ શાસ્ત્ર કે 12 અધિકાર બનાએ હૈ. હમ ઉસકે નામ પઢેંગે. દેખો જીવ અધિકાર, અજીવ અધિકાર, શુદ્ધ ભાવ અધિકાર, વ્યવહાર ચારિત્ર અધિકાર, પરમાર્થ પ્રતિક્રમણ અધિકાર, નિશ્ચય પ્રત્યાખ્યાન અધિકાર, પરમ આલોચના અધિકાર, અને નિશ્ચય સે પ્રતિક્રમણ ક્યા, પ્રત્યાખ્યાન ક્યા, આલોચન ક્યા, પ્રાયશ્ચિત ક્યા, સબ બતાએંગે. શુદ્ધ નિશ્ચય પ્રાયશ્ચિત અધિકાર, પરમ સમાધિ અધિકાર, પરમ ભક્તિ અધિકાર, निश्चय परम आवश्यक अधिकार और शुद्ध उपयोग अधिकार। जहां मूल में कार्य नी गाथा होए त्या टीकाकार तेमाथी कारण नी वात काढ़ी छे। क्या कहते हैं, वार्ता तो कार्य की है और उसमें से वो कारण को निकाल कर बता रहे हैं, क्योंकि कारण और कार्य कहीं दूसरे द्रव्य में नहीं होते हैं, एक ही द्रव्य में होते हैं। और जहां कारण है वहीं कार्य होता है, ऐसा नहीं कि कारण अंदर पड़ा है और बाहर के भाग में केवल कार्य हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। जितने क्षेत्र में कार्य है उतने ही क्षेत्र में कारण है, क्योंकि पर्याय कितने कहां कितनी बड़ी होती है, जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण उतनी बड़ी पर्याय। पर्याय ने कार्य और उसका गुण कहो या द्रव्य कहो उसका कारण, शक्ति तो द्रव्य में है ना उसके। केम के त्रीजी गाथा में कार्य नियम नी वात छे, तेमाथी टीकाकारे कारण नियम नी वात काढ़ी छे। अभी वहां क्या बात निकाली कैसे निकाली वो तो हम पढ़ेंगे। दस थी तेर गाथा में उपयोग नी चर्चा छे, तो टीकाकारे स्वरूप प्रत्यक्ष कारण स्वभाव ज्ञान उपयोग अने कारण दृष्टि नी वात करी छे। पंधरमी गाथा में वैभाविक पर्यायों थी परिचित जीवों ने हम कैसे परिचित है, वैभाविक पर्याय कौन से, राग द्वेष उनसे बहुत परिचित है और उसी की चर्चा करते ना, क्रोध मान माया लोक की। ऐसे जीवों को कर्मोपाधि वर्जित, कर्म की उपाधि से रहित, क्योंकि ये जो राग द्वेष आदि जो यानी जो 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 विभाव पर्याय है वह हमने देखा ना, पुराने कर्मों का उदय वहां निमित्त है। कल बात आई थी पंचाशी काय में, राग द्वेष को नैमित्तिक कहो, नैमित्तिक ने कार्य, तो पुराने कर्मों का उदय वो निमित्त कहेंगे, तो वो जो है वो उपाधि है। और यहाँ जो भाव हुए वो औपाधिक हुए, वहां निमित्त बताए तो ये नैमित्तिक, वो उपाधि है तो ये औपाधिक भाव कहेंगे। तो राग द्वेष मोह ये जो विकारी भाव है वो कैसे भाव है, औपाधिक भाव है, तो कैसे औपाधिक, कर्मोपाधि से हुए भाव ऐसा कहेंगे। देखो क्या कहा, अभी हम अपने विभाव पर्यायों से परिचित है, कौन से, राग द्वेष मोह। अभी ऐसे हम हमारे जैसे जीवों को कर्मोपाधि वर्जित स्वाभाविक पर्यायों की वात नो मर्म खोलता। अभी जब क्रोधमान माया लोभ हो रहे हैं तो हमारे गुण क्या सो गए हैं, क्या उनकी पर्याय चलती है कि नहीं चलती, ज्ञान चल रहा है, वो सभी अनंत गुणों का कार्य तो चल रहा है, पर हमने अपने को कैसा मान लिया है, विभाव रूप मान लिया। तो वहां पर भी स्वाभाविक पर्याय भी हो रही है, स्वभाव स्वाभाविक है ना, जीव की जो गुणों का जो स्वभाव है उसकी भी पर्याय चल रही है। वो ज्ञान वगैरह हर एक गुण की मत लो, जीव की जो नेचुरल गुणों की पर्याय है वो तो किसी गुण की पर्याय नहीं है, उसको कह देते हम चारित्र गुण की विभाव पर्याय। परंतु जीव अपने गुण और उसके पर्याय, जैसे 47 शक्तियों में क्या लिया है, निर्मल परिणमन रूप, जैसे जीव का क्या कार्य है, अपने अपने गुणों का परिणमन करना। तो राग रूप परिणमने का कोई स्वभाव नहीं है, हो रहा है परिणमन, वो स्वभाव नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, स्वाभाविक पर्याय वात नो मर्म खोलता टीकाकारे कारण शुद्ध पर्याय नो रहस्य बतावी अनंत उपकार करियो छे। जब विषय आएगा तभी उसकी और चर्चा होगी। 19वीं गाथा में संसारी तथा सिद्ध जीवो बन्ने नयो थी संयुक्त छे एम कहीने द्रव्य नी अचिंत्यता बतावी छे, यानी उन पर दोनों नए लगते हैं। अजीव अधिकार में शेष 5 द्रव्यों नु वर्णन छे। अभी अच्छी बात है ना कि वहां पर भी हम पंचाशी काय में वही बात देख रहे, 5 अस्थि काय और 1 काल द्रव्य उसकी, यानी सभी द्रव्यों की चर्चा होगी। यहाँ पर भी वही विषय चल रहा है, यही तो बिल्कुल बेसिक है, नींव है ये। ये अगर पक्की होती है तो उसके ऊपर वो जो दृष्टि का जो विषय वो सहज ख्याल में आ जाता है। ये अगर ज्ञान की अपेक्षा सही नहीं होगा तो वो डायरेक्ट दृष्टि की बात ख्याल में नहीं आती, नहीं तो वो राग को सर्वथा दूसरा कर देते हैं। पहले पहले जीव के पर्याय में है, जीव का अपराध है, जीव के अपने भाव है, पहले उसको स्वीकार करते हैं। शास्त्रकार 5 पेज पर आए, शास्त्रकार ने शैली मुजब तेमा पण पुद्गल नु वर्णन करता कारण परमाणु तथा कार्य परमाणु नु वर्णन करे छे। क्योंकि अजीव द्रव्य में क्या निकल, उसमें से अध्यात्म भरा माल निकाल के बता रहे। अजीव द्रव्यों ने वर्णन करती वक्ते पण अध्यात्म रसिक टीकाकार आनंद नितरता श्लोकों द्वारा तेने प्रकाशनार चैतन्य चमत्कार मात्र ना स्वरूप ने वारंवार स्मरे छे। वहां अजीव का वर्णन करते हुए उनके, जैसे हम किसी हीरे का माणिक का भी वर्णन करेंगे तो हीरे की वैल्यू नहीं बतानी है, हीरे को जानने वाले चैतन्य की वैल्यू बतानी है। अजीव द्रव्यों को जाना किसने, तो वो जानते हुए भी उसका वर्णन करते हुए भी, यानी कोई भी विषय चल रहा हो अपनी आत्मा की दृष्टि कैसे करना, ये इसमें से हमें सीख मिलती है। आगे बढ़ते, नियम एटले जे अवश्य करवा योग्य हो इत्ते, नियम का ही अर्थ है उसका, वो क्या है अवश्य करने जैसा, रत्नत्र है। कौन सा, ये बाहरी बात है ही नहीं, वहां ये जीव द्रव्य की बात है, उसके पर्याय की बात है। नियम सार एटले नियम नो सार अर्थात शुद्ध रत्नत्र है। आ शुद्ध रत्नत्र ने प्राप्ति परमात्म तत्व नो आश्रय करवा थी ज थाय छे, ज लगाया, अन्य किसी भी मार्ग से अन्य किसी भी उपाय से ये नहीं होता है। आ परमात्म तत्व की उपलब्धि अनादि काल थी अनंत अनंत दुखों ने अनुभवता जीवे एक क्षण मात्र पण करी नथी, अने तेथी सुख माटेना तेना झावा सर्वथा व्यर्थ गया छे। माटे आ परमागमनो एकमात्र उद्देश भव्य जीवोने एटले प्राणी मात्रने परमात्म तत्वनी उपलब्धि अथवा आश्रय करावानो छे। क्या कहते हैं ये शास्त्र का उद्देश्य क्या है? अरे जो आचार्य भगवान, तो उन्होंने तो अपना अनुभव किया ही है, उनकी तो अपने में अंतरंग में स्थिरता रूप कार्य चल ही रहा है, प्रचुर आनंद का अनुभव भी ले रहे हैं। अब यहाँ कहते हैं भव्य जीवों के लिए परमात्म तत्व की उपलब्धि के लिए इसकी रचना हुई है। अब हम थोड़ा आगे लिखते हैं, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में एक दो लाइन पढ़ के बताती हूँ मैं। ये जो बीच में जो लिखा है ना उसके नीचे, चौथी लाइन देखो, तारा धर्म नु ध्रुव कारण तो, धर्म तो हमें जो प्रकट करना है उस धर्म की बात है, वो वही वही वो जो बीच में श्लोक है ना उसके नीचे के पैराग्राफ की चौथी लाइन, तारा धर्म नु ध्रुव कारण तो, तारा मां सदा विद्यमान छे। हमें लगता है हमें कारण नहीं मिला तो हमारा कार्य कैसे होगा, कहाँ ढूंढना है, तो कहते हर समय विद्यमान है, अनादि से विद्यमान है, कहाँ, अपने में ही। परंतु तू तेने कारण नथी बनाओ तो, भूल क्या है, जो कारण है उसको कारण रूप से स्वीकार नहीं किया है, उसको कारण नहीं बनाते हैं, और वो कारण रूप से बाह्य में ही ढूंढते हैं, कुछ न कुछ क्रिया करेंगे, शरीर की क्रिया करेंगे, कुछ उपवास करेंगे, दान दया करेंगे, ये हमने कारण बाहर ढूंढा है। तेती दुखी छो, अहो अंतरनु कारण मुनियोना आत्मा माथी ज अमृत झर्या छे, तेनी अचिंत्य ने अपूर्व वात छे। अभी आगे बढ़ते हैं, इसमें उसकी बहुत बहुत महिमा गाई है उन्होंने, थोड़ा आगे इस छह पेज पर आते हैं। यानी इसमें इस पुस्तक में दो दो अधिकार लिए हैं, जीव अधिकार और अजीव अधिकार। और उसमें जो कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं उसके 32 प्रवचन यहाँ इस पुस्तक में उसकी चर्चा है, यानी वो यहाँ अक्षरशः उसको ले लिया। यानी पद्म प्रभु मलधारी ने जो संस्कृत श्लोक और टीका लिखी है और उस पर ये जो गुजराती में जो सारा विवेचन लिखा है वो कांजी स्वामी के प्रवचन है। हम अभी प्रवचन ये श्लोक भी पढ़ेंगे, जो जो संस्कृत में लिखा है वो पद्म प्रभु आचार्य का है, यानी उन्होंने एक्सप्लेनेटरी टीका लिखी है, जैसे हम पंचास्तिकाएं में जयसेनाचार्य की बात पढ़ रहे हैं, अमृतचंद्राचार्य की पढ़ रहे हैं, वैसे यहाँ पर है। और स्वामी जी के प्रवचन तो है ही है, उन्होंने और उसमें से और खोला है। यानी हम कितने भाग्यवान हैं कि कुनकुंदाचार्य की वाणी, उसको पद्म प्रभु आचार्य ने, पद्म प्रभु मलधारी देव ने उसको और खोल कर निकाला है उसमें से माल, और ऊपर कांजी स्वामी के प्रवचन हुए। अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना पुस्तक का पहला पृष्ठ। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री नियम सार, उसमें पहला जीव अधिकार चलेगा और उसके ऊपर श्री पद्म प्रभ मलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति, इसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। अब इस पर ही पूज्य स्वामी जी के भी प्रवचन हुए हैं। अभी हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक जो संस्कृत श्लोक है वो तो पद्म प्रभ मलधारी देव के लिखे हुए हैं, क्योंकि देखिए टीका लिखना शुरू की तो मूल जो गाथा है, पहली गाथा, वो तो बाद में आएगी। टीकाकार प्रथम अपना मंगलाचरण करेंगे, उसकी प्रथम बात करेंगे, फिर कहेंगे ये आचार्य ऐसा कह रहे हैं, फिर वो पहली गाथा आएगी, ख्याल में। उसके पहले इनके श्लोक है, सात श्लोक है उनके लिखे हुए। हाँ, हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे और उसका श्लोकार्थ भी पढ़ेंगे। हाँ, पहले चार दिए हैं। हाँ, बाद में उसकी के गुजराती अनुवाद वगैरह सब क्रम से देखेंगे भी हम इसको। त्वयि सति परमात्मन् मा दशान् मोह मुग्धान् कथम तनुत्वशान् बुद्ध केशान्यजेहम् सुगतम गधरम वा वागधीशम शिवम वा जित भवम अभिवंदे भासुरम श्रीजिनम वा। सेकंड लाइन है कथमतनुवशत्वात् बुद्ध केशान्यजेहम्। अभी इसका अर्थ देखना है हमको। दूसरा तीसरा श्लोक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बीच में लिखा है ना मूल गाथा, उन्होंने तात्पर्य नामनी टीकानो गुजराती अनुवाद, वहां से हम पढ़ते हैं। प्रथम ग्रंथना आदिमा श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव विरचित प्राकृत गाथा बद्ध आ नियमसार नामना शास्त्रनी तात्पर्य नामनी संस्कृत टीका रचनार मुनि श्री पद्म प्रभ मलधारी देव सात श्लोकों द्वारा मंगलाचरण वगैरह करे छे। अभी जो हमने श्लोक पढ़ा है उसका श्लोकार्थ यहाँ दिया हुआ है। हे परमात्मा, तू होता वो मारा जेवा यानी संसारियों जेवा मोह मुग्ध अने काम वश बुद्ध ने तथा ब्रह्मा विष्णु महेश ने किम पूजो। ये क्या कहते हैं, भगवान वीतराग भगवान की स्तुति करते हैं कि हे वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, आपके होते हुए मैं सरागियों को क्यों वंदन करूं? ये सरागी कैसे कि मेरे जैसे मोहमुग्ध ने कामवश बुद्ध अने ब्रह्मा विष्णु महेश, अन्य मतियों ने जो उनका स्वरूप माना हुआ है, ऐसे जो रागी द्वेषी जो जीव है उनको मैं क्यों देव करके मैं नमस्कार करूं? ऐसे ये कहते स्वयं। कहते नज पूजू जेने भवो ने जीत्या छे तेने हूँ वंदु छूं, तेने प्रकाशमान एवा श्री जिन कहो। अभी जो भगवान है सर्वज्ञ वितरागी है उनको जिन तो हम कहते ही है, सुगत कहो। ये सुगत नाम एक बुद्ध का भी है, परंतु हम सुगत, अभी उन्होंने सिद्ध पर्याय प्राप्त की है, गिरिधर कहो। ये गिरिधर कृष्ण को भी कहते, पर वो कृष्ण के अर्थ में यहाँ नहीं लेना है। वागीश्वर कहो के शिव कहो। अभी उसमें फुटनोट में हम पढ़ेंगे, उसी के नीचे बुद्ध ने सुगत कहेवामां आवे छे। एक आंकड़ा लिखा है ना, सुगत एटले शोभनीकता ने प्राप्त, उसका शब्दशः अर्थ अथवा संपूर्णता ने प्राप्त। श्री जिन भगवान मोह राग द्वेष ना अभाव ने लीधे शोभनीकता ने प्राप्त छे, अने केवल ज्ञानादिक ने पाम्या होवाने लीधे संपूर्णता ने प्राप्त छे, पूर्ण विकास हो गए ना उनके, तेथी तेमने अही सुगत कह्या छे। दूसरा शब्द क्या था, गिरिधर, कृष्ण ने गिरिधर अर्थात पर्वत ने धरी राखनार कहेवामां आवे छे। ये गिरिधर क्यों लिखा, क्या किया था उन्होंने? हाँ, ऐसे कोई अन्य तो कोई हो गए क्या गिरिधर? हाँ, देखो देखो, ये नारायण जन्मते हैं, नारायण पहले घोषणा होती है ना, ये नारायण वगैरह है, तो वो कोटिशिला उठाते हैं, आपको याद होगा। हाँ, सभी नारायण ने उठाए थे, कोटिशिला उठाते हैं वो। हाँ, ज्यादा नहीं उठा सके। हाँ, नारायण थे इसलिए वो तो कोटिशिला उठाते, उससे वो तो अन्य, हाँ, समझ में दूसरे भी समझ जाते। हाँ हाँ, कोटिशिला उठाई थी ना। हाँ, सभी नारायण उठाएंगे ना। हाँ हाँ, वो कहाँ तारंगा में बताते ना, कोटिशिला कहाँ बताते, कहाँ हम गए थे यात्रा में तो बताते ये कोटिशिला है करके, याद नहीं। हाँ, तो गिरिधर उनको कहने में आता है, श्री जिन भगवान अनंत वीर्यवान हुआ थी तेमने ही गिरिधर कहा छे। ये अनंत वीर्य, ये शरीर का बल तो उनके होता ही होता है, परंतु उनके आत्मा के अनंत वीर्य की बात है यहाँ पर। ब्रह्मा ने अथवा बृहस्पति ने वागीश्वर अर्थात वाणी का, वाणी ना अधिपति कहेवामां आवे छे। श्री जिन भगवान दिव्य वाणी ना प्रकाशक हुआ थी तेमने ही वागीश्वर कहा छे। देखो, अन्य मति ने माने हुए ऐसे कोई है ही नहीं वहां पर, जो कोई सृष्टि की रचना करने वाले हो या कोई ऐसा। अब चौथा, शिव कहा था ना ऊपर, महेश ने शंकर ने शिव कहेवामां आवे छे। श्री जिन भगवान कल्याण स्वरूप होवाथी तेमने अही शिव कहेवामां आवे छे। शिव मोक्ष को भी शिव कहते हैं, कल्याण को भी शिव कहते हैं। अब दो नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, बाद में आगे की बात करेंगे। वाचं वाचं यमीन्द्राणां वक्रवारिजवाहनां वन्दे नयद्वयायत्त वाच सर्वस्व पद्धतिम्। इसका श्लोकार्थ तीन नंबर के पृष्ठ पर है। वाचम यमीन्द्रोनु, जिन देवोनु, वाचम यमी, जैसे हम संयमी कहते ना, तो वाणी के यमी उसमें जो इंद्र, जिन देवोनु मुख कमल जेनु वाहन छे, अने बे नयोना आश्रये सर्वस्व कहना कहवानी जेनी पद्धति छे, ते वाणी ने। देखो, वाणी का वर्णन चल रहा है, वाणी के लिए वाहन क्या है, जिन देवोनु मुख कमल, उसके द्वारा वाणी खिलती है, और बे नयोना आश्रय सर्वस्व कहना कहवानी पद्धति छे, शायद बाद हम कहते ना, ते वाणी ने, एने जिग्न भगवंतोनी श्यादवाद मुद्रित वाणी ने हूँ वंदु छू। पहला नमस्कार किसको किया, परमात्मा को किया, दूसरा नमस्कार उनकी वाणी को किया है। अब ये पांच नंबर जो फुटनोट की बात हम करते हैं, वाचम यमेंद्र बताए, नीचे देखते हैं, वाचम यमेंद्रो मुनियों मा प्रधान अर्थात जिन देवो, मौन सेवनाराओं मा श्रेष्ठ अर्थात जिन देवो, वाक संयमियों मा, वाचम यमेंद्र है क्या, वाक संयमी, वाणी के संयमी, इंद्र समान अर्थात जिन देवो, वाचम यमी अने मुनि मौन सेवनार वाणीना संयमी। अब तीन नंबर का श्लोक देखते हैं।
सिद्धांतोद्ध श्रीधवम सिद्धसेनम तर्काब्जार्कम वट्टपूर्वाकलंकम शब्दाब्दिन्दुम पूज्यपादं च वंदे तद्विद्याढ्यं वीरनंदिं व्रतींद्रम।
अनेक आचार्यों का उन्होंने यह नमस्कार करके उनकी याद किए। देखो इसका अर्थ देखते हैं। उत्तम सिद्धांत रूपी श्रीनापति, श्री लक्ष्मी कहो, सिद्धांत रूपी वैभव है सिद्धसेन मुनिंद्र ने। दूसरी बात, तर्क कमलना सूर्य भट्ट कलंक मुनिंद्र ने, यानी वो तो तर्क, उनके जो न्याय शास्त्र प्रसिद्ध है ना, कल भी अकलंक मुनि जी की बात आई थी ना, उसमें पंचास्तिका में किसमें देखी थी हमने, आत्मानुशासन में ली थी, आत्मानुशासन में आया था नाम उनका। शब्द सिंधुना चंद्र पूज्यपाद मुनिंद्र ने, अने तद विद्या थी तत्व ज्ञान थी समृद्ध वीरनंदी मुनिंद्र ने हूँ वंदु छू, यानी उनके पूर्वाचार्यों को वंदन करके पद्म प्रभु मलधारी देव यहाँ ये ग्रंथ की टीका लिखना चालू करेंगे। अब यहाँ छह नंबर देखते हैं। तर्क कमलना सूर्य ने, तर्क रूपी कमल ने प्रफुल्लित करवामा सूर्य समान। जो तो तर्क अनुमान आदि जो बातें होती है ना, जो जो न्याय शास्त्र की जो सिद्ध करना है किसी तत्व को हमको, तो उसके लिए अत्यंत निष्णात थे। शब्द सिंधु ना चंद्र का अर्थ क्या है, सिंधु ने समुद्र, जैसे समुद्र के लिए चंद्र निमित्त कहने में आता है, तो पूर्णिमा का दिन ऐसे उछलता है ना, ऐसा ही कहते हैं। शब्द सिंधु ना चंद्र, शब्द रूपी समुद्र ने उछाड़वामा चंद्र समान, यानी शब्दों पर वाणी पर उनका इतना प्रभुत्व था। अब आगे बढ़ते हैं चार नंबर का श्लोक।
अपवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मनः पुनः वक्षे नियमसारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम।
देखो ये मंगलाचरण में पहले पंच परमेष्ठी को या भगवान की वाणी को नमस्कार करके अभी मैं कौन सा ग्रंथ कहूंगा उसकी बात प्रतिज्ञा पूर्वक लिखते हैं कि मैं अभी ये कहूंगा करके। पहले तो ये धौला वगैरह में बहुत सारी चर्चा है मंगल की, तो मंगल में क्या क्या करते हैं उसका, फिर पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, फिर उसका हेतु बताते हैं किसके निमित्त से लिखा गया, वो सारी चर्चा उसके अंदर आती है। तो यहाँ भी लिखते देखो, बहुव्यो ना मोक्ष ने माटे, अपवर्ग ने मोक्ष, भव्यानाम अपवर्गाय, यानी भव्यों के मोक्ष के लिए, तेमज निज आत्मा ने शुद्धि ने अर्थे, शुद्धये स्वात्मनः पुनः, नियम सार ने तात्पर्य वृत्ति नाम ने टीका हूँ कहिश। आचार्य ऐसा नहीं कहते दूसरों के लिए करो, अपने ही कहते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, क्योंकि ये जो टीका का काल है उसमें उनके भी परिणाम, उनके भी उपयोग उसी में इतना सूक्ष्म हो जाता है, कितने बार वो लिखते लिखते तो कितने बार अंतरंग में स्थित होते, बारंबार बाह्य में लिखने का विषय चलता है, उस विषय में इतने गहराई से पहुंच जाते हैं कि बारंबार शुद्धोपयोग में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ जो बीच में लिखा है ना वो प्रवचन है, 71 से किसका, अच्छा अच्छा देखो क्या है कि उस दिन जो प्रवचन हुए थे उसके बीच में उनका नियम सार शुरू हुआ है। ये जो तारीख लिखी ना 27/2/1971, क्योंकि वो विषय क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगी आगे के पेज पर चलना, पांच नंबर का पेज। ठीक है ये पढ़ लू, पढ़ेंगे मगर नियम सार की बात, नियम सार शुरू करेंगे पांच नंबर के पेज से। क्योंकि विषय क्या चल रहा है वो तो उसका हमने पढ़ के देखा था, तो उसका संदर्भ नहीं आता है कि कौन से ग्रंथ उस समय चल रहा था और किसका वो एंडिंग यानी अंत का विषय चल रहा था उस दिन। और ये नियम सार की बात यहाँ से शुरू होती है, 5 नंबर के पेज से, वहीं से लेते हम, क्योंकि ये आपको उसका कोई संदर्भ स्पष्टीकरण कोई पता नहीं लगता है। देखो 5 नंबर के पेज पर मिला, हवे आजे नियम सार शुरू करव छे ने सेठी, नियम सार नहीं लाव्या? हाँ, अष्टपहुर का अंतिम भेद, वो शील के भेद वगैरह उसकी चर्चा उसके अंदर। सेठी ने नियम सार आपो, नियम सार आखे देखाय छे के तकलीफ छे? हवे आ नियम सार शास्त्र आज शुरू थाय छे, मांगलिक तरीके आज एनु मंगलाचरण छे। ओम परमात्मने नमः। श्रीमद भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत कुंदकुंदाचार्य परमात्मा नियमसार जीव अधिकार। नियमसार एटले आत्मा शुद्ध चैतन्य मैना समय दर्शन ज्ञान चारित्र एने नियम कहे छे। आत्मा शुद्ध अखंड ज्ञानमय छे एनो आश्रय लईने सम्यक दर्शन थाय, એનો આશ્રય લઈને સમ્યક જ્ઞાન થાય, એનો એને આત્માનો નહીં તો સમ્યક દર્શનનો નહીં, હા આશ્રય સબકો શુદ્ધાત્મા કા હૈ, એનો આશ્રય લઈને સ્થિરતા થાય એને નિયમ એટલે મોક્ષનો માર્ગ કહે છે। અને સાર એટલે વિકારના વ્યવહારના વિકલ્પ રહિત એવો આત્મા અખંડ આનંદ સ્વરૂપ છે, એની સન્મુખતાનું દર્શન જ્ઞાનને ચારિત્ર તે વિકાર વિનાનું એને નિયમસાર કહેવામાં આવે છે। શરૂઆત થાય છે, હું 5-6 વર્ષ પહેલા વાંચેલું છે, પણ આ જીવ અધિકાર શ્રી પદ્મપ્રભ મલધારી દેવ વિરચિત તાત્પર્ય વૃત્તિ કુંદકુંદાચાર્યની ગાથા છે ને ટીકા। દેખો ગાથા એ સબ પ્રાકૃત મેં હૈ ઓર યે જો ટીકા વો સંસ્કૃત મેં હૈ। ટીકા પદ્મપ્રભ મલધારી દેવ मुनि दिगंबर वनवासी जंगल में रहता एमने आनी टीका बनावी छे। हवे पहला नमस्कार करे छे। पद्मप्रभु मलधारी देव टीका करता नियमसारनी टीका एटले स्पष्टीकरण करता पहला मंगलाचरण करे छे। त्वयि सति परमात्मन मादशान मोह मुग्धान कथमतनुवशत्वान बुद्ध केशान्यजेहम सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवंदे भासुरं श्रीजिनं वा। अभी हमने इसका श्लोकार देखा था, मंगलाचरण परमात्मानु 7 श्लोकों द्वारा मंगलाचरण करे छे। हे परमात्मा, जो परमात्मा केवा ये ओळखीने वंदन करे छे। क्या कहा? हम बचपन से क्या करते आए, माँ ने बोला हाथ नमस्कार करो तो माथा टेक दिया उसमें, तो कैसे उनको पहचान कर नमस्कार करना है। भगवान का स्वरूप पीतरागी सर्वज्ञ है, हम तो जो देखा भगवान चलो जय नमस्कार, वो भगवान है कि नहीं उसका भी निर्णय नहीं करते न? क्या कहा? परमात्मा केवा ये ओळखी ने वंदन करे छे। अरहंत देव सर्वज्ञ देव जेने अनंत ज्ञान दर्शन आनंद प्रकट थया छे एने कहे छे, हे नाथ हे परमात्मा, तू होता आ जगत मा तारी हयाती परमात्मा नी होवाथी हूँ मारा जेवा एने संसारीओ जेवा, मारा जेवा एटले संसारी जेवा एम लीधु छे। मोह मुग्ध मिथ्यात्वमां मोहमुग्ध एवा ईश्वर नाम धरावनाराओने केम पूजू? जो स्वयं मिथ्या दृष्टि है और ईश्वर नाम से जाने जाते हैं उनको मैं क्यों पूजू? एम कहे छे। अने कामवश बुद्ध ने शब्द छे ने शरीर विनानू काम जे विषय में वश थई गया छे, स्त्री में वश थया छे, जगतना कर्ता तरीके मानीने राग ने ताबे थई गया छे, एवाने हूँ केम पूजू? समझानू काई? यानी वो सरागी अन्य देवी देवताओं को मैं क्यों पूजूं?
हे परमात्मा, तू तो मोह रहित छो, ते काम ने वश कर्यो छे। काम ने वश तू थयो नथी, यानी परमात्मा ने उसको वश किया है, वो उसके वश नहीं हो गए हैं। एवं परमात्मा सर्वज्ञ देव पूर्ण आनंद ने प्राप्त अरिहंत पदे होए तो शरीर आदि होई छे, पण एनु शरीर परम औदारिक अने रोग क्षुधा कर ओश्रुधा हुए, क्षुधा तृषा विनानु होई छे। उनके कोई भूख नहीं, कोई रोग नहीं होता है, हाँ कोई प्यास नहीं लगती। एवा परमात्मा ने मुकी ने आ काम ने वश थेला, राग ने वश थेला एवा ने हूँ केम नमू? आंतरो पाड़े छे, आंतरो समझाए छे काई? एवा बुद्ध ने लो, आ बौद्ध कहे छे ना, बुद्ध भगवान ने, बुद्ध भगवान ए बधा मोह मुग्ध हता, एने आत्मानु भान नहोतु, राग मा मुग्ध क्षणिक पद ने मानना रहा, एने आत्मा का अनुभव नहीं है, तो सारे कैसे मोह मुग्ध है। ब्रह्मा विष्णु महेश ए बधा अज्ञानपणे माननारा वस्तुना स्वरूपनो एवा जीवोने हे परमात्मा, आपनी वितरागता ने निर्दोषता एने मैं जानी, अने एना सिवाय बीजाओने हवे केम हूँ नमू? हवे कोने पूजू? न ज पूजू। जेने भवोने जीत्या छे तेने हूँ वंदु छू। जिन छे ने जिन, जेने आत्माना आनंद द्वारा उदय भाव, उदय भाव ने उदय भाव, राग जेने जीत्यो छे। जिन नाम क्यों पड़ा? जिसने जीत लिया है। किसको जीत लिया? मोह राग वेश को जीत लिया है, उसको जिन कहते हैं। परम स्वभाव आत्मानो एना द्वारा जेने पहलू मिथ्यात्व जीत्यो, नाश कर्यो, पछी अस्थिरता नाश करी, अने पूर्ण जेने आनंद ने स्थिरता परमात्मा दशा प्रकट थई छे। देखो पहले में पहले जाएगा तो मिथ्यात्व तो जाएगा। हम अभी प्रत्ययों की चर्चा चल रही ना सुबह में, कौन से प्रत्यय याद है? बंध के कारण चार मूल प्रत्यय कौन से? मिथ्यात्व, असंयम, कषाय, प्रमाद को कषाय में ले लो, कषाय और योग है ना। तो उसमें सबसे पहले में पहले मिथ्यात्व के जीते बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता। और सबको चिंता है मैं क्रोध कैसे कम करूं, किसी को ये चिंता नहीं होती कि मैं सम्यक तो कैसे प्राप्त करूँ, मिथ्यात्व का नाश कैसे करूँ। पहले में पहले दिखता है तो क्रोध दिखता है, हिंसा दिखती है, परंतु ये मिथ्यात्व नहीं पता चलता है। और सबसे बुरा करने वाला यही तो है ना, मिथ्यात्व ही है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, चौथी लाइन थी, जेने आत्माना आनंद द्वारा उदय भाव राग ने जेने जीत्यो छे, परम स्वभाव आत्मानो एना द्वारा जेने पहलू मिथ्यात्व जीतू। किसके द्वारा? अपने स्वभाव के द्वारा। स्वभाव का ही लक्ष्य करना है, स्वभाव को ही स्वीकार करना है। नाश करियो, पछी अस्थिरता नाश करी। अस्थिरता कैसे नाश हुए? फिर वो अंतरंग में स्थिर हुए तो बाह्य में अस्थिर उसके जो परिणाम चंचलता वो नष्ट हो गई। अने पूर्ण जेने आनंद ने स्थिरता परमात्मा दशा प्रकट थई छे, जेने भव जीत्या, एटले भव नथी हवे। अभी वो दो लोगों का उद्धार करने के लिए ईश्वर फिर दूसरा अवतार लेता है, ऐसी बात यहाँ नहीं होती है। एक बार सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, अभी फिर दोबारा जन्म धारण नहीं करेंगे। एवा जिनने हूँ वंदु छू, एवा परमात्मा ने वंदन करू छू, पहलू देव ने वंदन करू। जो देव आवा होय एने ओळखावे छे, जेने स्त्री होय ने हथियार हाथ में होय ने राग ने ताबे थई गया होय ए बधा परमात्मा नथी। स्त्री है, हाथ में धनुष है, तलवार है, गदा है, जो कुछ है, शस्त्र अस्त्र वस्त्र, वस्त्र जिसने पहने हैं, अलंकार माला दी पहने हैं, वो कोई भगवान नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि राग ने ताबे थई गया है, कैसे पहचाना कि ये तो हमारे शत्रुओं का नाश करते हैं और अपने भक्तों पर वो दया करते, उनके रक्षण करते, वो क्या है? राग अवश्य कर रहे हैं ना। तो तो कहते हैं बधा परमात्मा नथी। देखो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसे कोई परमात्मा है ही नहीं है, तो मनुष्यों की कल्पना की उपज है। वो लोग कहते ईश्वर ने उत्पन्न किया मनुष्य को, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे मनुष्यों ने अपने कल्पना में इस ईश्वर की उत्पत्ति की नहीं। ऐसे कोई दुनिया को बनाने वाला कोई ईश्वर है ही नहीं, और ना ही कोई नाश करने वाला है, और ना ही कोई संभालने वाला है। ईश्वर आदि नाम धराव्या होय, पण ईश्वर तो आवा होय, जेने भवने जीत्या। एनो अर्थ के जे अभव स्वरूप आत्मानु एने प्रकट कर्यो, अने उदय भाव भवनु कारण एने पोते नाश कर्यो, भव के कारणों का नाश कर दिया और अभव ऐसे आत्मा का आश्रय लिया। उदय शू ने स्वभाव शू, जब तक ये नहीं समझते तो ये क्या बातें चल रही है कुछ नहीं समझ में आएगी, अभी उसकी चर्चा चलेगी आगे, अभी हम यही रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।